राम।
यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 17 जुलाई 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।
उत्पन्न पाई जाता है ज्ञान मुद्रा कृष्णा गीता मृत दुखी नमस्तेणूरमर्दनमीपरमानंदम कृष्णी विभूषितकदा पीतांबराधरुणबिंबराधरोष्ठा सुंदर नारायण। नंद जी मथुरा गए थे कंस की भेंट लेकर के। जब पीछे लौटने लगे तो वसुदेव जी से मिले थे, उनकी आपस में बातें हुई जिसमें कहा कि ये चित्रकर्मा नहीं कत्र संवास हो भगवती चित्रकर्मणा। कर्मों के चित्र विचित्र होते हैं, कोई शुभ और कोई अशुभ और कोई शुभ मिश्रित ऐसे। उन कर्मों के कारण से आदमी का एक जगह रहना नहीं होता। मानो नंद जी का वसुदेव जी का वियोग हुआ उस समय कहते हैं कि आपस में मित्रता हो स्नेह हो एक जगह रहे, परंतु कर्मों की ऐसी विचित्र दशा है जो एक जगह रह नहीं सकते। महाभारत में आया है अस्मिन् महामोहमये कटाहे सूर्याग्निना रात दिवेन्द्रनेन मासर्तुदर्वी परिघट्टनेन भूतानि कालः पतति इति वार्ता। युधिष्ठिर महाराज का वो यक्ष का संवाद है, उसमें अपने वन में गए थे, वहां हरिणी ले गया लकड़ी अग्निमंथन दंडो ले गया, तो उनके पीछे गए, प्यास लग गई, फिर देखा भाई जल तो नकुल सहदेव गया, नकुल गया, अर्जुन गए, भीमसेन गए, पीछे लौट कर नहीं आए, तो वो गए की बात क्या है। स्वयं गए विशेष जागृति का तो चारों ही भाई मरे पड़े जल के किनारे, तो उन्होंने परीक्षा की जल में कोई दोष नहीं है और इनके भी कोई जहर खाया हो ऐसे कोई नखा पर आंखों पर कोई असर है और असर सस कोई लगा हुआ दिखता नहीं है, बात क्या हुई। फिर तो विचार भी प्यास लगी है तो जल पी ले, इस बात में विचार करेंगे। तो जल पीने वो गए तो एक आवाज आई कि हमारे प्रश्न के उत्तर दिए बिना जल पियो तो ये दशा तुम्हारी हो जाएगी, मर जाओगे, नहीं तो हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। तो हम कई प्रश्न किए, उसमें कहते हैं लोग हाथ से मिलते हैं, बोलो क्या बात है, क्या बात है ये, तो वो वार्ता क्या है कि मास्टर कह संग कंथा कह संपंत कह पंथा कष्ट मोदी, ऐसे कई प्रश्न किए। एक बात पूछी है कि आदमी मिलते हैं तो बोलो क्या बात है, जब पमे की गल है तो क्या बात है, बात क्या है पूछा यक्ष ने। तो महाराज ऋषि ने कहा अस्मिन् महामोहमये कटाहे सूर्याग्निना रात्रि दिवेन्धनेन मा सर्तु दर्वी परिघट्टनेन भूतानि कालः पतति इति वार्ता। ये काल देव है, संपूर्ण प्राणियों को पकाता है, जैसे कोई रसोई बनाता है तो पकाता है, इस तरह से काल संपूर्ण प्राणियों की रसोई में सो खा जाता है, काल को सब खा जाता है। काल को कालो दिन रस्ता था देवो मंत्र का, तो सब खा जाता है, तो रसोई बनाता है। तो कैसे बनाता है, अस्मिन महामोहमय कटा है। एक जो मोह है ना दुनिया का, ये मोह रूपी एक कड़ा है, उससे बारे कोई जा नहीं सकता, मोह के अंतर रहेंगे। अस्मिन महामोह कटमय कटा है सूर्याग्निना, उस जरण में क्या सूर्य रूपी आग जलती है, रात दिन ईंधन उसमें जलते हैं, और मास ऋतु है ये दर्वी है, उसमें समसा है महीने में, तो वो पसने वालों कभी इधर डाल दे कभी उसको यूं डाल दे, पकाते हैं तो इस वास्ते भूतानी काल पसती प्राणियों को सबको पकाता है काल देव। ये बात है संसार की बात, ये है सब जा रहे काल के मुंह में और ये कड़ा है उसमें पक रहे हैं, ऐसी बात बताई। तो ये बात है, इससे सिद्ध क्या हुआ कि महीना ऋतु दिन ये उसमें कड़ा है मैं चमचा है, तो इससे उथल पुथल करते थे। कई आदमी यहाँ आ गए थे, यहाँ के कई दिन चले गए, कलकत्ता चले गए, मद्रास गए चले गए, कई विदेश चले गए, कई वहां से आ गए, तो महीना और ये दर्वी है डोई, जिसको मारवाड़ में डोई कहते हैं, तो वो चमचा जैसे इधर उधर कर देते हैं, यूं कर दिया इधर कर दिया, ऐसे भूतों को काल पकाता है। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि ये छोटे छोटे होते हैं बालक, ये बड़े हो जाते हैं, तो बड़े होते हैं तो बड़े कितने होते हैं, बूढ़े हो जाए तो चावल है चने हैं, ये पकाए जाते हैं, चावल बड़े बड़े हो जाते हैं, छोटा छोटा चावल होते हैं वो पकने पर बड़े बड़े हो जाते हैं, पक जाए फिर भोजन कर लेते हैं। ऐसे काल भगवान सबको पचाता है, भोजन कर जाता है, उसमें कई कई देखते हैं भाई कितने चावल पके कैसे, ऐसे लेकर देखे हो ऐसे कर दे, उसमें खत्म हो जाता है। ऐसे छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसे, तो ऐसा ये बात है संसार की। तो अस्मिन महामोहमय कटा है सूर्याग्निना रात्रि दिवेंधने न मास्टर तु दर्वी परिघटने न भूतानि काल पसती थी वार्ता। अरे क्या कह पंथा महाजनो ये गत संपन्था किमाश्चर्य महान भूतानि गच्छन्ति यो मंदिरम शेषास्थात गच्छन्ति किमाश्चर्य परम। तो क्या आश्चर्य क्या है कि मात्र प्राणी सदा हरदम जमराज जा रहे मौत की तरफ जा रहे हैं और बस जाए, वे कहते हम फिर रहेंगे ऐसा ही, इससे बड़ी आश्चर्य क्या होगा। देखते हैं कि कोई फिर रहा नहीं, फिर नहीं आती, फिर नहीं घोड़ा, फिर नहीं नारी पुरुष का जोड़ा, फिर भी कहता हम स्थायी रहे, ये मोह रूपी कड़ा में पड़े हुए दानों का हाल है। तो इसको आश्चर्य बताया, अहम ज्ञान भूताने गच्छन्ति यो मंदिर, रोजाना रोजाना ऐसे आस्था तो मिच्छन्ति, कहते हम तो रहेंगे कि माश्चारी माता पर इससे बढ़कर क्या आश्चर्य। दिन दिन मात्र जो प्राणी जमक आस्थावर बिछनते क्यों आश्चर्य लखा, इससे बड़ी क्या होगा। तो उसमें ये बताया, तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि ये प्राणी एक जगह नहीं रहते, जन्मते हैं वो भी एक जगह जन्मते हैं, कहीं फिरे करे और मौत आ जाती ले जाते हैं, मौत का पता नहीं है, बूढ़े ही होकर के मरे, ये काल का नियम नहीं है, जितने जिनकी आयु है वैसे वैसे भी रहते हैं। तो बड़े हो बूढ़े हो जवान हो बहन हो भाई हो बच्चे हो कोई क्यों हो, सबको जाना पड़ता है, समय पर सब जा रहे हैं, सब ये उस काल में पस रहे पक रहे हैं, और इसका भोजन काल भगवान भोजन कर रहे हैं, खा रहे हैं। भगवान ने अर्जुन से ही कहा न काल हो उसमें आख्या ही में को भगवान गुरु रूप, ऐसे गुरु रूप आप कौन है महाराज, कहते कालो उसमें, कहते इतने बड़े बड़े जो है लोका क्षयार्थम वृद्ध काल विष्णु लोक अक्षय प्रवृद्ध यह क्यों आए हैं कि लोका समाज तुम्हें प्रवृत्त यहाँ प्रवृत्त हुए हम लोका श्रृंगार करने के लिए तो ये काल सबका श्रृंगार कर रहे हैं। अब आपस में मोह करके चिंता करते हैं हमारा बेटा मर गया हमारा पति मर गया हमारा पुत्र मर गया भाई मर गया संबंधी कुटुंबी मर गए माँ बाप मर गए ये कोई नई चीज नहीं है अनादि काल से ये प्रवाह चला आ रहा है तो मरते हैं जाते हैं जन्मते हैं रहते हैं मरते हैं ये हो रहा है काम सभी जैसे जैसे हो रहा है तो ये जा रहा है सभी इस वास्ते मनुष्य को समझना चाहिए कि भाई अपना काम ठीक करो छोटे छोटे बालक चले जाए माँ बाप के रहते हुए अचानक मृत्यु हो जाए तो हो जाए भी क्या करें तो सावधान होना चाहिए इसमें कि भाई अपने उनके लिए क्या अपने लिए विचार करो। एक कवि ने कहा कि बाप के खातिर रोते थे अब आप के खातिर रो बाबा घोड़े पर जी नजर हो बाबा अब मौत नगारा आ बागा मृत्यु का नगारा आ गया है औरों के लिए रोते थे बाप के खातिर रोते थे अब आपके खातिर वही अब तुम्हारी भी बारी आने वाली है सबकी बारी आ जाएगी बारी आप अपनी चले प्यारे मित्र तेरी बारी रह मेरी आ गए नित्य तेरी नजीक आ रही है बारी जाने का दिन आ रहा है सावधानी से भगवान का स्मरण कर लो क्यों सो काम भजो सो राम भगवान का भजन कर दिया सत्संग कर दिया स्वाध्याय कर दिया भगवान का चिंतन कर दिया तो अच्छी पूंजी हो गई और नहीं तो भाई समय से चला जाएगा ये ठहरेगा नहीं अटकने वाला है नहीं ये तो निरंतर जा रहा है। इस वास्ते मनुष्य को चाहिए कि प्राण रहते रहते परमात्मा की प्राप्ति कर ले नहीं तो ज्यादा से ज्यादा रास्ता कर रहे इसमें खूब लग जाए तो वो लगन उसका उद्धार करती है किसी कारण से अंत समय में भगवान की याद नहीं रही तो फिर उसका जन्म हो जाएगा फिर जन्म करके ही वो भगवान पूरा अभ्यास पूर्व के अभ्यास कारण परवश होकर खींचेगा भगवान तब जाएगा ये तो जाना पड़ेगा भाई तो भगवान ही तुम जितने हमें चले जाए जितना कर रहे ये पूंजी जितनी इकट्ठी हो जाए ये तो है पूंजी ये धन संपत्ति वैभव ये तो दीघता है सुपना सो हो जा उसे सुकुटुंब धन धाम सुपना आया और आंख खुलते कुछ नहीं ऐसी आंख मिसती कुछ नहीं फर्क इतना ही है सपने से आंख खुल जाती है और इस सपने से आंख मिस जाती है बस समीर अने और नहीं किंच दस्त दो आंखें मिस गई चलती फिरती ये झोंकड़ी बंद हो गई फिर कुछ भी नहीं है। मारवाड़ी कहावत है आप मुंह जग पड़ ले अपने मर गया जग पड़ रहे हो गए सब खत्म हो गया कोई नहीं रहा हमारे सामने अकेले जाओगे अकेले आए हो भाई। इस वास्ते मनुष्य को सावधान होना चाहिए। एक कथा आती है रघुवंश में वशिष्ठ जी महाराज थे उसमें राजा अज रजा राजा अज था उसके दशरथ जी हुए महाराज दिलीप दिल के रघु रघु के अज अज के दशरथ जी दशरथ जी के रामचंद्र जी महाराज तो राजा अज बगीचे में घूम रहे थे रणवास में एक बगीचा होता है राजा होती वहां बगीचा रहता है उसमें सिवाय राजा को और कोई पुरुष नहीं जाता रानियां घूमती करती वहां उनके लिए होता है। तो एक दिन महाराजा अज अपनी इंदुमती रानी के साथ में घूम रहे थे बगीचा में ऊपर नारद बाबा अपनी बीना को बजाते हुए आकाश में जा रहे थे तो बीना में एक थी फूलों की माला वो टूट गई और इंदुमती ऊपर पड़ी वो महारानी इंदुमती पर वो मरते हुआ पड़ते ही मार वही मर गई महाराज से मर गई तो अचानक मर जाने से महाराज दशरथ को बड़ा शोक हुआ कि हमारी महारानी चली गई अचानक ना कोई बीमारी ना बात से अचानक ही मर गई। तो वहां वशिष्ठ जी महाराज को पता लगा ये पीढ़ियों से गुरु आते हैं वशिष्ठ जी कई पैसा बीत गई बूढ़े बाबा से। तो वहां एक वशिष्ठ जी महाराज ने एक ब्रह्मचारी को भेजा कि तुम जाओ राजा को समझाओ, फिर अपने पास करेंगे, तुम जाओ। तो ब्रह्मचारी आया है, उस ब्रह्मचारी ने बात कही है, कहते हैं ये अच्छे पुरुष होते हैं उनके और साधारण होते हैं उनके आपस में फर्क है। क्या फर्क है कि साधारण आदमी को तो कोई मर जाता है तो वो कहते हमारे तो शेर गट गया कलेजे में, एक शेर का एक गट गया हमारे। यावंत कुरते जंतु संबंधान मनस प्रियान तावंतोष निखन्यन्ते रे शोक संकव। यावंत कुरते जंतु संबंधान मनस प्रिया, मन को प्यारे लगे जो संबंध करता है तावंतोष निखन्यन्ते रे शोक संकव, उतने ही शोक कीले गड़ी गड़ी आया करते हैं। तो वो कीले गड़ जाती है जिसमें कोई मर जाता है तो जोरदार कील गड़ती है। और समझदार आदमी होते थे उनकी ऐसी बात होती थी कि इतनों से संबंध था जितनों की चिंता थी, अब कोई मर गया तो हमारा तो कांटा निकल गया, शेर निकल गया, अब खत्म हो गया, अब कोई चिंता न फिकर है। ऐसा उपदेश दिया उसने ब्रह्मचारी जा करके महाराज आज को। तो बात याद मुझे कितनी विष्णु बात है। दूसरा तो कहता है मर जाने से हमारे केल गड़ गई, सेल गड़ गया भीतर में और वह कर चाहिए एक सेल तो निकल गया, अभी भी चिंता फिर कोई नहीं है तो समाप्त हो गया। गीता में गता सुन अगता सुन से नाम सोचती पंडिता, तो गता सुन अगता सुन। तो एक भाई ने प्रश्न किया था गता सुन तो शोक करते हैं भाई मर गए, मर गए उनका तो शोक करते हैं, अगता सुन ना सोच नाम सोचती, तो अगता सुन जो मरे नहीं जीते हैं। तो एक शंका किसी भाई ये शोक तो होता ही नहीं, गता सुन अगता सुन से नाम सोचती पंडिता। तो इसका उत्तर हुआ गता सुन की चिंता तो थोड़ी होती है, अगता सुन भी ज्यादा माता पिता है भाई है स्त्री है पुत्र है भतीजा है भाभी है इक्की सुन है ना, तो इनकी सबकी चिंता रहती है। तो इनकी चिंता है वो अगता सुन की है, जीव है उनकी चिंता कैसे निर्वाह होगा कैसे जीविका चलेगी कैसे काम होगा कहाँ काम लगे कैसे, ये चिंता है अगता सुन की। और मर जाए तो वो गता सुन है, अशुप्राण चले गए जो गता सुन अगता सुन से नाम सोचते पंडिता। पंडित होते हैं वो जीते हुए भी चिंता नहीं करते, मर गए उसी की चिंता नहीं करते। ये तो वही नई बात कुछ है नहीं, जन्म के बाद अगर कोई आवश्यक काम है तो मरना ही है, अनिवार्य काम है ये होगा ही, और तो होगा कि नहीं होगा शंका है, बस ये तो होगा लड़का जन्मा है बड़ा होगा कि नहीं होगा बचपन ही चला जाएगा। हमारे घनश्याम जी थे जो गीता पे से मुद्रक थे, वो कहते थे हम तो 5-7 वर्षों का बालक होता है तब तो समझते ही नहीं, ये तो फूल लगा फल लगा गिर जाए तो क्या पता इसका, ये कोई बड़ा होगा देख लेंगे फिर होगा, तो जितने फूल लगते उतने फल नहीं लगते और फल लगते उतने पकते नहीं पहले गिर जाते हैं। तो ऐसे छोटे बच्चों को हम तो मानते ही नहीं है, क्या पता कब गिर जाएगा। तो ऐसी बात है भाई छोटे और बड़े सब बारी आप अपनी सले प्यारे मित्र अपनी अपनी बारी आ गई समा आ गया तो उसको तत्काल जाना ही पड़ता है, इसे अगर किसी का जोर चलता नहीं तो बालक वो बड़ा होगा कि नहीं होगा संदेह है, इसके पुत्र होगा कि नहीं होगा संदेह है, परंतु ये जिएगा कि नहीं जिएगा मरेगा कि जिएगा तो मरेगा ये संदेह रही बात है। सच्ची बात है बिल्कुल पक्की बात है कि जब जन्मा है तो मरेगा जरूर, अभी चाहे आज मरे चाहे 100 वर्षों बाद मरे पर मरना जरूरी काम है, ये तो बिल्कुल ऐसी बात है अनिवार्य है ये तो होगा ही। तो भाई छोटी अवस्था में चला जाए तो चिंता होती है। कहते गीता में कहा कि वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानी गिरनाथ नवपुराणी, पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े आदि पहनता है, ऐसे जीर्णानी शरणानी भी आए, जीर्ण सही हो जाते हैं, बूढ़े हो जाए तो फिर सही छोड़ देते हैं। हम तो देखते हमारे साथ बालक मर जाते हैं छोटे छोटे, उनके सही को जीर्ण नहीं दिखते, ठीक दिखते हैं शरीर, जवान आदि मर जाते हैं। तो भाषा से जीर्ण आदि कैसे कहा, भाषा से तो कहा ऐसे कपड़े होते हैं कई दिखते हैं बड़े नए, परंतु ऐसे होते हैं पुराने पड़े हुए कपड़े के जो थोड़ा दिनों के बीच बिखर जाते हैं। तो जीर्ण होना मतलब कि पुराना ही घोर पटे ऐसी बात नहीं है, नए दिखते हैं वो भी अपने आदि आयु पूरी होने से वो जीर्ण हो जाते हैं। 80 वर्ष की उम्र से 80 वर्ष में हो गए, 5 वर्ष के 5 वर्ष में ही हो गया, अचानक बढ़ना पड़ता है भाई। इस वास्ते बच्चों के लिए मोटू बड़ों के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, उनके नाम से जप करो कीर्तन करो, शास्त्र की विधि के अनुसार से उनका काम करो, तो ये ऋण होता है, वो ऋण अदा होने से फिर चिंता नहीं होती, अपने पर ऋण रहने से चिंता ज्यादा होती है। कल भी सुनाया था ये बात है, सिद्धांत की बात है। और सत्संग करने से आपस में विचार करने से शोक मिटता है, ये शोक होना है ना, दुख होना है शोक होना है, ये बिने विचार होता है, परिस्थिति बदलती है, ये तो कर्मों के अनुसार है, कर्मों का दुख लोग कहते हैं भी अपने अपने किए कर्मों का फल दुख है, तो कर्मों का फल दुख नहीं है, कर्मों का फल तो संयोग वियोग है, जितना संयोग और संयोग रहेगा और कर्म आगे वियोग हो जाएगा, कोई और जगह चला जाएगा, कोई और जगह चला जाएगा, कोई मर जाएगा, कोई जीते ही चला जाएगा, आपस में स्नेह होता है वो भी टूट जाता है, तुम तुम्हारे हमारे ऐसा हो जाता है। तो ये प्राप्ति के अनुसार होता है, तो प्राप्ति के अनुसार परिस्थिति बनती है, शोक और चिंता होते वो प्राप्ति का फल नहीं है, ये फल है मूर्खता का, अज्ञान का, बेसमझी का, बेसमझी का जो दुख है वो समझ होने चला जाता है, क्योंकि ऐसी देखी है बात कि सत्संग करने से दुख मिट जाता है, सच्चा सुनने से दुख मिट जाता है, रोते रहते हैं चिल्लाते रहते हैं और सत्संग मिल जाते रोना बंद मिल जाता है, चिंता मिट जाती है। इस स्थिति क्या हुआ, प्राप्ति का काम तो उस मनुष्य का वियोग करा दिया, प्राप्ति काम तो इतना ही है, अब वियोग करने पर दुखी सुखी हो जाना ये मूर्खता का काम है। नारद जी की कथा आती है ना, व्यास देव को नारद जी ने कहा कि आप घबराते क्यों, उन्होंने कहा कि महाभारत का वर्णन किया तो बहुत लोगों कथा कहते हैं नाश नाश कथा करी तो मेरे चित्त में शांति नहीं है। तो नारद जी ने कहा आप भगवान के चरित्र वर्णन करो, लड़ाई झगड़ा से अशांति होती है, तो भागवत कहा कि भागवत का उपदेश, भागवत है वाल्मीकि रामायण, ये नारद जी उपदेश हुआ है, वाल्मीकि जी को कहा तुम रामायण बनाओ और व्यास जी को कहा भागवत बनाओ, भगवान के चरित्रों का वर्णन करो, ये भगवान के चरित्रों का वर्णन करने व्यास जी महाराज, तो भगवान के चरित्र वर्णन से व्यास जैसों के भी हिल हलचल होती वो मिट जाती है, वाल्मीकि जी मिट गई। तो ये बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं, भगवान के चरित्र सुनने से कहने से लिखने से मनन करने से चिंता मिटती है, तो सत्संग करने से चिंता मिटती है, शोक मिटता है, हलचल मिटती है, ये बात एकदम पक्की शक्ति बात है। सत्संग करके देख लो कोई अच्छा संग मिल जाए और अगर सुनी जाए बातें ठीक से मनन करें तो मनुष्य को शोक नहीं रहता, चिंता नहीं रहती है, प्रारब्ध का क्रम तो होता रहता है, प्रारब्ध का तो मरना मर जाएगा, धन चलाएगा चला जाता है चला जाएगा, बीमारी आनी तो आ जाएगी, ये तो है प्रारब्ध के अधीन, पर चिंता शोक ये प्रारब्ध के अधीन नहीं है। बहुत से लोग यूं समझे प्रारब्ध का दुख भोग रहे हैं, अपने किए हुए का फल भोग रहे हैं, और किए हुए का फल तो परिस्थिति होती है, शोक चिंता मूर्खता से होते हैं, और मूर्खता सत्संग से मिट जाती है, अब वो जी जाए तो चिंता मिले, जीना आती बात नहीं है, सत्संग करो तो चिंता मिट जाती है। तो प्रारब्ध का फल घटना घट जाती है, वो घटना तो है प्रारब्ध का फल, चिंता होनी ये है प्रारब्ध का फल नहीं, ये है बेसमझी का फल। तो समझ के द्वारा बेसमझी मिट जाती है, सत्संग के द्वारा अज्ञान मिट जाता है, अज्ञान मिट जाता है तो चिंता मिट जाती है, फिर मौज हो जाती है, आनंद रहता है। इस वास्ते मनुष्य के लिए सबसे बढ़िया चीज ये है कि सत्संग करे, और सत्संग न मिले तो सत्शास्त्रों का स्वाध्याय करे, जो भगवान की गीता है, भागवत है, रामायण है आदि ऐसे ग्रंथ है उनका अध्ययन करे, संत महात्माओं के द्वारा लिखे हुए लेख है, ग्रंथ है, उन ग्रंथों का अध्ययन करे। जो जो पढ़ोगे, जो जो उसमें प्रवेश हो गए, चिंता मिट जाएगी, अवस्था नहीं बदलेगी। धन चलाएगा तो धन आ जाए नहीं आ जाएगा, बेटा मर गया तो बेटा जन्म नहीं जाएगा, दूसरा पैदा नहीं हो जाएगा, अथवा मरा हुआ जी जाएगा, ये बात नहीं है। रोग हो गया तो रोग निरोग हो ही जाएगा, ये हाथ की बात नहीं है, परंतु चिंता मिट जाएगी, ये हाथ की बात है। तो सत्संग हुआ ऐसा विशेष महात्म्य है, सत्संग करने से चिंता फिर मिट जाते हैं, वो समझे बात आ जाती है, भाई शोक करने से क्या हो बताओ, ये तो होने होना रहे होकर रहेगा, अब चिंता करो तो ऐसे होगा, न करो तो नारद जी बात बताई, नारद जी खुद उपदेश दिया व्यास जी को, खुद नारद जी ने अपने पहले जन्म की बात बताई है भागवत में आरंभ में ही, तो कहा कि मैं एक वेदवादी थे, उनके घर की एक दासी का मैं पुत्र हूँ, दासी का पुत्र था, तो वो मेरे को लगन लगी भगवत संबंधी, संतों ने चातुर्मास किया, वहाँ चातुर्मास में मेरी माँ को वहाँ का काम दे दिया, यहाँ जल भर दिया करो, झाड़ू लगा दिया करो, ये तुम्हारी ड्यूटी है। तो बालक हमारे साथ में रहे, मैं भी साथ में ही रहता वहाँ, तो वो तो महाराज बड़ी कृपा करने वाले संत थे, उनकी कथा चलती थी, तो कथा में जाकर मैं बैठ जाता, कथा मेरे को अच्छी लगती, तो कथा अच्छी लगने से उन संतों की कृपा हो गई, चक्रु कृपा में यद्यपि तुल्य दर्शना सबके ऊपर समान दृष्टि रखते थे, परंतु मैं कथा सुनता था, तो मनुष्य जैसे धन का त्याग कर दे, अपने मोह का त्याग कर दे, कुटुंब का त्याग कर दे, असर पड़ता अभी बैरागे इसको, अरे बालक हो अगर खेल त्याग कर दे तो खेल का त्याग यही बड़ा भाई त्याग है उसका, खेल में रस आता है, आनंद आता है उसमें, तो बड़े भाई धन का त्याग, कुटुंब का त्याग साधु हो जाता है, ऐसे बच्चों का खेल का त्याग करना ही बड़ा है। तो त्याग अधिकीर्ण की अनुवर्ती नहीं, मैं खेल नहीं करता, खेल छोड़ करके कथा सुनता था, तो कथा सुनता था, संता ने कृपा की कि जो कैसा बच्चा है खेल को छोड़ कर कथा सुनता है, कृपा करी और उसमें प्रसाद पाया उनका, उन्होंने उपदेश दिया, मंत्र दिया, मैं जाने लगे तो बड़ा दुख हुआ, परंतु फिर भजन की बात में लगन लग गई, भजन करता था, तो माँ काम करती थी, तो एक दिन की बात है वो गाय ढूंढने के लिए गई, वहाँ घास हरा हरा उसमें से एक सांप निकल दो काट गया माँ को, कहा माँ मर गई, तो माँ मर गई, ये बचपन में माँ मर जाना ये कोई बड़े दुष्कर्म का ही भाई खराब खराब काम किया था, तो प्रारब्ध के कारण माँ का वियोग हो गया, अब बच्चे के माँ का वियोग हो और क्या था, इशारा क्या, माँ का इशारा होता है, वो मर गई तू दुख होता है। नारद जी कहते हैं मेरे सुख हुआ, नाचने लग गया, खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, क्या वो कहते हैं बेटा खा ले, ऐसे आ जाए, यहाँ आ जाए, सो जाए, भोजन कर रहे, मैं भजन में लगा हुआ, उसका मोह होता ज्यादा, जब मैं लोग कर रही तो मेरे दिल में मौज हो गई, अब भजन करूँ, कोई मना करने वाला नहीं, जंगल में निकल गया, एक झरने का जो पी करके भजन में लगे, वृक्ष नीचे बैठा तो ध्यान लग गया, भगवान का चिंतन हो गया, चिंतन का फिर ध्यान लग गया, ध्यान बड़ा आनंद आया, मैंने छूट गया ध्यान, तो व्याकुल हुआ, रोने लग गया, कि भाई भगवान का ध्यान नहीं होता क्या करें, तब आकाशवाणी हुई, कदू दर्शो हम कोई होगी ना, इनके लिए मैं दर्शन नहीं देता हूँ, तेरे को बता दी एक बात, इसका चमत्कार दिखा दिया, तू ध्यान कर, भजन कर, अगर दूसरे जन्म में मेरे दर्शन हो गए, इस दर्शन इसमें नहीं, तो वो परेशानी भी हो जाए, ये शरीर है आपस है, ये छूटे तो फिर दूसरा दर्शन मिले, तो दूसरे में दर्शन मिलेंगे भगवान के, ऐसा भजन करने लग गया। तो हमारी तीसरी बात कहनी थी कि प्रारब्ध का काम तो माँ का मर जाना है, वियोग हो जाना, बच्चे से माँ बिछुट गई, माँ का बच्चा बिछुट गया, तो माँ मर गई बच्चा ही खड़ा रह गया, ये तो है प्रारब्ध का फल। परंतु नारद जी के दुख नहीं होगा, उल्टा सुख हुआ, ये नारद जी का विचार का विवेक का सत्संग का फल है। तो प्रारब्ध का फल दुख नहीं है, प्रारब्ध का फल घटना है, अनुकूल प्रतिकूल घटना घट जाती है, ये तो है प्रारब्ध। कर्म का फल दुख होता ही है, मूर्खता का फल, मूर्खता ज्ञान होने से मिट जाती है, मिट जाने से दुख मिट जाता है। तो सत्संग भजन ध्यान करने से, अच्छा संग करने से आदमी का दुख मिट जाता है। एक होता दर्द, एक होता दुख, हाथ के अगर लग जाए तो दर्द तो यहाँ होगा, दुख यहाँ होता है, चिंता यहाँ होती, कोई मर जा कर बड़ी चिंता होती, भीतर में खड़बड़ी मचती है, यहाँ दुख होता है। तो सत्संग करने से दर्द तो नहीं मिटता, दर्द तो दवाई लगाने करने से मिटता है, परंतु सत्संग करने से दुख मिट जाता है। दुख हृदय की जो जलन है, हृदय की चिंता है, हृदय का शोक है, ये मिट जाते हैं। अर्जुन के भी शोक हुआ तो भगवान ने धन नहीं दिलाया, राज्य नहीं दिलाया कि राज्य मिल जाएगा। भगवान अर्जुन ने कहा कि तेरा शोक नष्ट हो जाए, तो अर्जुन ने कहा कि महाराज पृथ्वी का क्या है, स्वर्ग का भी धन धान्य समृद्ध और निष्कंटक असपत्नम, ऐसा निष्कंटक राज्य मिल जाए तो मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। शोक वैसे दूर कैसे हो जाएगा, धनी आदमी अच्छे अच्छे उनकी शोक चिंता होती मिटता नहीं, और सत्संग करने वाला आदमी मामूली आदमी उसके भी शोक होता नहीं, उनके भी स्त्री मर जाए, उसके पुरुष मर जाए, उसका पुत्र मर जाए, संबंधी कुटुंब मर जाए, तो ऐसी बात है। तो धनियों की मरते हैं, गरीबों की मरते हैं, और धन अधिक होने पर उनके शोक मिट जाए इस बात नहीं है। और सत्संग होता है तो कैसी हालत है हमारी, मस्त रहते हैं। तो ये शोक चिंता होना है, ये प्रारब्ध का फल नहीं है, ये दुख प्रारब्ध का फल नहीं है, परिस्थिति प्रारब्ध का फल है। परिस्थिति आ जाएगी वैसी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति, तो परिस्थिति का सदुपयोग किया जाए तो साधन सामग्री है परिस्थिति, दुखदायी परिस्थिति भी साधन सामग्री और सुखदायी परिस्थिति भी साधन सामग्री, वो भगवान का भजन करने की सामग्री है। ये तो अब दुख भोगी बढ़ जाते हो, भोग भोग से दुख ही सुखी दुख होते रहते हैं, अरे भाई दुख से क्या हो रहे हो, ये तो साधन सामग्री है, अपना साधन बनाओ। सुखदायी सामग्री मिली है, धन संपत्ति वैभव अधिकार योग्यता अच्छा मिला है, तो इसके द्वारा दूसरों को उपकार करो। विद्या विवाद आय धनम मदाय शक्ति परेशान परिकीर्णाय खरस्य साधु विपरीत में विज्ञान आय दान आय संरक्षण आय। विद्या पढ़ गए तो बिढ़ा है दुष्ट को, विद्या आ जाए तो दूसरों को हराने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, तिरस्कार करने के लिए विद्या होता है, विवाद करने के लिए। और धन होता है घमंड के लिए, भोगों के लिए दूसरों का, और शक्ति दूसरों को पीड़ा देने के लिए। साधु और साधु पुरुष होते गए, विद्या होती तो अपने और दूसरों के ज्ञान के लिए होती है, अपने शोक दूर है औरों का भी शोक दूर करे, ये विद्या है। ज्ञान आए और धन होता है तो दान आए, वो दान के लिए होता है, दूसरों को सुख पहुंचाना, गरीब है अभावग्रस्त है उनके वस्तु की हमारा वस्तु का प्रबंध कर देना, धन पैसा भगवान दिया है हमारे पास ज्यादा है उसकी दाना है, वो धन दाना है। और शक्ति परेशान परिपीड़ना है, दुष्टों की शक्ति आती है तो वो अहिता क्षयासम क्षय करने के लिए चाहूंगी दे आशी संपत्ति में स्वर्ण में अध्याय में क्षयाय जगत रोहिता प्रभु अंत्युग्र कर्माणा क्षयाय जगत रोहिता जगत अहिता प्रभुवंती, किसमें कक्षाया है दुख देने के लिए वे समर्थ होते हैं, जल का नाश करने के लिए, दुख देने के लिए, कष्ट देने के लिए होती है। और सज्जनों के पास होते तो ज्ञान आए दान आए रक्षण आए, दूसरों की रक्षा करेंगे। तो सज्जनों के धर्म तो और सुख देना ये है पर अपनी परिस्थिति का सदुपयोग। धन हुआ, विद्या हुई, योग्यता हुई, इसका फल दो तरह का बताया आपको। तो दुष्टों का तो दुख देने को होता है और सज्जनों के पास में होते है तो रक्षा करने के लिए। तो दुखदायी सुखदायी परिस्थिति होती है और दुखदायी प्रवृत्ति दुखदायी परिस्थिति आ जाए तो दुखदायी परिस्थिति त्याग कर दो। धन नहीं है तो अभाव से दुख होता है, तो धन हमारे लेना नहीं है, हम धन की गर्ज नहीं है, उसकी इच्छा त्याग दो। देखो इच्छा त्यागनी पड़े, धन हो तो इच्छा का त्याग करने सुख होगा और धन नहीं हो तो इच्छा का त्याग करने सुख हो जाएगा। इच्छा का त्याग करना ही पड़ेगा, तो इच्छा को त्याग हर हालत में करो। नहीं है तो अपने चाहिए ही नहीं है। हमारे मित्र से साधु एक दिन की बात है, आज तो महाराज दूध मिला नहीं, दूध वो बता दूध पीना नहीं है हमारे को, नहीं मिले तो पीना ही नहीं है हमें। या बड़वी से रहते थे एक संत आए, महाराज दूसरा करो कि ना आज हमने छुट्टी कर दी, खाने की रोजना है ना, ये छुट्टी कर दी आज, आज खाने की छुट्टी कर दी। अच्छी बात है, रोजना एक धंधा करना पड़ता है, ये आज छुट्टी कर दी, आज नहीं खाएंगे, आज ताती हो गया, बस छुट्टी हो गया। तो वो छुट्टी कर देते। एक साधु ने कहा कि महाराज भोजन क्या करते हो, कि भोजन तो भिक्षा का पा लेते हैं, जैसे भिक्षा नहीं मिलती है तो भूख पा लेते, भूख पा लेते हैं तो बड़ी युक्ति बढ़िया ही साधुओं की युक्ति है, भिक्षा नहीं हो तो भूख वो ही पा लेते हैं। भूख पा रहे क्या, कि आज रोटी नहीं खाएंगे, बस भूख को पाले, भूख से अपने आज भूख रेडी है तो हमने भूख ही खा लिया। तो ये संतों की युक्ति है। अब परिस्थिति कैसे दुख दे बताओ, ना भूख दुख दे सकती है, ना धन का अभाव सुख दे दुख दे सकता है, ना किसी मृत्यु की दुख दे सकता है। ये तो भाई हो ना रहे, अवश्य भावी भावा नाम प्रतिकारो भवि धरी तथा दुख तथा दुखे नीरा श्लोक आता है। अवश्यम भावा भावा नाम, अवश्यम भावी है उनका जो अभाव हो जाए ये हाथ की बात नहीं, अवश्यम भावी भावा नाम प्रतिकारो भवि, यदि प्रतिकार हो जाए अगर प्रतिकूलता मिट जाए तब दुखे नर लिप्यन नल राम युधिष्ठिरा, नल में भी आप आ गई, राम जी भी आ गई, युधिष्ठिर भी आ गई, अपने करने से होता तो क्यों पाते, सब सुख कर रहे थे। अवश्य भावी भावना उसका प्रतिकार नहीं होता, वो तो अवश्य होती है। तो अवश्य होने वाली चीज वही दुख क्यों करो भाई, सूर्य उदय भी होगा, प्रकाश होगा और अस्त हो जाएगा, अंधेरा भी होगा, रात भी होगी, ये तो होगा। ऐसे सुख दुख अलंग्यम दिन रात्रि वक्त, जैसे दिन रात अलंग होता है, वो आता ही रात और दिन दोनों आते हैं, ऐसे सुख भी आता है दुख भी आता है, ये आता है जाता है। अब सूर्य हो जाए खुशी मनाते हो, रात आगे दुख मनाते हो, तो आपकी मर्जी की जीवन बनाओ, वे तो होती रहे आपके सुख दुख के कारण, रात दिन तो बदलेंगे नहीं, ये तो अपनी बारी मुश्किल आता ही रहेगा। ऐसे अनुकूलता प्रतिकूलता है, परिस्थिति है, ये तो आती ही रहेगी। संसार स्वरूप यही है, संसार का अगर देखा जाए तो स्वरूप अनुकूलता प्रतिकूलता ही है। और संसार क्या है, संसरणशील है, सह जा रहा है, इसी तो संसरण होता है, सिंह प्रकार सरती संसार असी तरह जा रहा है, तो निरंतर जा रहा है, तो निरंतर खत्म हो रहा है। अब इसमें कोई सुख ले तो सुख कैसे ले, वो तो चला जाएगा, दुख दुखी क्यों हो चला जाएगा, तो चला जाएगा ही देगा, सुख में भी दुख में भी ठहरेगा नहीं। आगमा पाए नो अनित्य, आने जाने वाले अनित्य, आम स्थिति भगवान कह तो भाई इनको तो सह लो, आने जाने वाले दुख है, दुख भी आने जाने वाला है और सुख भी आने जाने वाला है, टिकने वाला ना सुख है ना दुख है, टिकने वाला तो भगवान है, उससे प्रेम करो वो टिकने वाला है, सदा रहेगा, सदा सदा दिवाली संत के हाथों का आनंद मौज रहेगी। ये तो टिकने वाले आगम पाए इन्होंने, आने जाने वाले हैं अनित्य, स्थिति स्थिति तुम सह लो, सहने का मतलब कैसे जन फिकार क्यों जाते हो भाई, ऐसा हो गया अच्छी बात है। ऐसे हो तो वाह वाह, ऐसे हो तो अपने सुख मिला सही वाह वाह, दुख मिला सही वाह वाह, अपने तो मौज होगी जो आए से भगवान की मर्जी, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला, भगवान की मर्जी है, सुख आया तो भगवान की मर्जी, दुख आया तो भगवान की मर्जी, अपने क्यों दुखी होगा, सुखी हो अपने तो मस्त रहे हर हाल में भगवान की मर्जी समझ करके, भगवान का दिया हुआ दुख दुख भी होता है सुख होता है, भगवान की मर्जी मान लेने से बुखार आ जाए तो आनंद रहता है, घाटा लग जाए तो आनंद रहता है, मनुष्य कोई मर जाए तो आनंद रहता है, क्यों प्रतिकूल परिस्थिति में पाप कटते हैं, अनुकूल परिस्थिति में पुण्य कटते हैं, पुण्य का फल होता है सुखदायी परिस्थिति, तो जितना सुख भोगोगे इतना तुम्हारा पुण्य खत्म हो जाएगा, पाप का फल होता है प्रतिकूल परिस्थिति, उस प्रतिकूल परिस्थिति में जितना भोगोगे उतना पाप कट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बड़ी अच्छी बात है, पाप ही कट गया अपना, मारवाड़ी तो कोई बात हो जाए जो पापो कटे हुए पापो ही कटे होते, पाप कट गया बहुत अच्छा हुआ, जो दुख देने वाला पाप है वो परिस्थिति आने पर कट जाएगा, कैसे टिकेगा बेचारा, इसको तो सर ठीक है महाराज, तो सुख हर्ष ही जड़ हर दुख बिल खाए, जड़ होते हैं सुख में हर्ष करते हैं दुख में बिल खाओ, दो समझी सरे मन मानी पंडित दोनों बरबर समझे, अब अच्छा मुंडा को कल सुनाया था ना, मानो दुखदायी परिस्थिति आती हुई खराब दिखती है, अगर जाती हुई अच्छी दिखती है, अगर सुखदायी आती हुई अच्छी दिखती है, जाती हुई दिखती है, तो फर्क क्या देना, एक तरफ इसके सुख है एक तरफ उसके सुख, एक तरफ इसके दुख है उसके दुख है, सुख दुख है समय करते लाभ लाभ हो जया जय हो, बस हिंदू दोनों को बरोबर समझ कर युद्ध करो, पाप नहीं लगेगा, पाप से खुशी और दुख में यहाँ लगता है, क्यों सुख ये क्यों दुख ये, पाप लगे नया पुराना पाप पर खर्च हो गए और नया दुख सुखी हो जाता नया पाप कर, अपने तो है जो ठीक है, जो ठाकुर जी कर दे वो अच्छा है, जो परिस्थिति घट जाए ठाकुर जी मर्जी हो गई, बहुत ठीक हुआ अपने सब में ठीक है, मंगल हो गया बस महा मंगल हो गया, आनंद हो गया अपने तो, ठाकुर जी की मर्जी हो गई ना, अपनी मर्जी से वैसे हम राजी होते हैं तो भगवान के भक्त नहीं हुए, अपने मन बुद्धि के भक्त हुए, अपने इंद्रियों के भक्त हुए, अपनी मर्जी के भक्त हुए, अगर भगवान के भक्त हो तो जो परिस्थिति उसमें खुश हो जाए, वाह भगवान की ये मर्जी है बहुत मन है, ऐसे रहेंगे अब इस तरह से रहेंगे, समझे बीमारी आ जाए तो वो ऋषि हो जाएंगे, हम सुस्त रहेंगे, हमारे ख्याल में अब नाच नट आएंगे, बड़ा नट राजा मर्जी मर्जी हो जो नचाओ महाराज, हम तो वैसे ही नाचेंगे, अनुकूलता मिली तो वही नाचा, प्रतिकूलता मिली वही नाचा, आपको सुख भेजना है तो उसमें ही राजी है, देखो ठाकुर जी के प्रसाद होता है ना अन्नकूट प्रसाद, अन्नकूट प्रसाद में मिष्ठान भी कई तरह के होते हैं, साग भी कई तरह के होते हैं, उसमें करेला का साग भी होता है जो कड़वा लगता है, ठाकुर जी के प्रसाद में फर्क नहीं है, रसगुल्ला खाओ तो वो भी है और करेला खाओ तो भी ठाकुर जी का प्रसाद है, अब वो भी छोटा बड़ा कौन सा है, बढ़िया घटिया कौन सा है, जिब्वा के दास होंगे तो मीठा अच्छा लगेगा कड़वा बुरा लगेगा, अरे ठाकुर जी का दास होगा जो मिलेगा उसे खुद अच्छा लगेगा, ठाकुर जी का प्रसाद है ये तो भोग लगाया है ठाकुर जी का, ऐसे ठाकुर जी भेजे सुखदायी भी परिस्थिति ठाकुर जी की भेजी हुई, दुखदायी परिस्थिति ठाकुर जी की भेजी हुई, वो भी एक प्रसाद है, ऐसा कड़वा है तो ही प्रसाद है, मीठा तो प्रसाद है, प्रसाद में तो फर्क है नहीं, अब जीव कोई चखावनी असमानती है तो जीव का दास कोई, हम तो ठाकुर जी का दास है, जीव के दास नहीं है, शरीर के थोड़े गुलाम है, इंद्रिया मन के गुलाम थोड़े, हम तो भगवान के हैं, भगवान जो भेजो ठीक होगा, मनुष्य तो अपने इंद्रियों और मन के अनुकूल मिलता है उसको सुख मानते हैं, और इनके प्रतिकूल मिलता है वो दुख मानते हैं, और भगवान के भक्त हैं उनकी दृष्टि भगवान के पर रहती है, भगवान का ही विधान है, तो भगवान है पीछे तो सुख मिले तो भगवान है, दुख मिले तो भगवान है, अपने भगवान का भेजा हुआ विधान है, दोनों फर्क क्या है, चाहे उसमें रसगुल्ला हो चाहे करेला का साग हो ठाकुर जी का है, ऐसे ठाकुर जी का प्रसाद मान करके पूरे मर्द भाई जो हर हाल में खुश है, अरे मस्ते वाह वाह ठाकुर जी वाह बहुत बढ़िया बहुत किया है। भगत रघुनाथ की कथा आती है ना, रघुनाथ अन्नपूर्णा के साथ ब्याह हुआ था, वो जब ससुराल से जाने लगे अन्नपूर्णा साथ में, अन्नपूर्णा की माँ को तो बड़ा दुख हुआ कि हमारी बेटी पैदल जा रही है क्या करे, मानती नहीं है, दूसरा ब्याह करते थे हम तो वो जा रहे थे। उस मंत्री पुत्र को पता लगा कि तेरा शादी होनी थी, वो जा रही है एक आदमी के साथ में, उसने फौज बड़ी घुड़सवार हो गई बहुत, पीछे आओ दूर दूर देखी तो अन्नपूर्णा ने कहा कि ये माँ की कसम से माँ ने भेजा है, आप बताए नहीं वे आगे चार गुजरे, वो आग ले कहाँ ले जा है, मेरे हृदय का धन है ये मेरी स्त्री है, तू कहा ले जा रहा है, अगर जीना चाहे तो छोड़ दे, नहीं तो अभी मारा जाएगा। बस डर गई अन्नपूर्णा, डर गई स्त्री तो पति थे महाराज राजी हो गए, वो देख रहे थे कि भगवान वाह प्रभु वाह 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 बड़ी कृपा करी, ये डहा दो पहाड़ के पहाड़ दुख हो गए, इसके बाद में आपके दुख होते हैं सुख होता है आपकी कृपा है। कुंती माता ने वरदान मांगा है कृष्ण भगवान की बुआ, राजा मैं तो वरदान दे रहे हैं कि बुआ जी क्या चाहो, संतु नुरु करे या हमारे तो विभूति चाहिए, विभूति देव विभूति आप होते आप संतु नो, ये कोई बदान होता है कुंती माता ने मांगा है करने से क्यों क्या भगवतो दर्शन है ये ना, आप बताओ आपकी याद आती है, आपका भजन होता है, आपका दर्शन होता है तो सुख के माथे सिर पड़ो तो नाम हृदय से जाए, बलियारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए, भगवान सिर्फ वृत्ति लगे उसी बलियारी है, तो दुख में सब सुमरण करे सुख में करे न कोई, और सुख में जो सुमरण करे दुख का है कोई, भगवान की मर्जी में सुमरण करते हैं, दुख आने पर भी संताप नहीं होता, उनके तो मौज होती है, भगवान का भजन होता है, भगवान की याद आती है, तो दुख बढ़िया है वो जिसमें भगवान की याद आए, और वो सुख बहुत घटिया है जिसमें भगवान को भूल जाए। सीता जी की खबर देकर हनुमान जी महाराज आए, तो महाराज हनुमान जी ने कहा कि सीता के लिए विपत्त विशाला बिना कहे भर दिए दयाला, अब क्या कहो रातों में पड़ी है रात और दिन, और राक्षस ने चारों और भय देता है डराती है तरह तरह से, रावण भी आता है वो दूर देता है तरह तरह कहते मार दूंगा मैं, मार दी उसमें नहीं कर्म खत्म कर दूंगा, तो मारने को दौड़ा बिंदु दिन से क्या करते स्त्री पर हाथ चलाते हो बना गया सीधा गया हाँ मार दे मार दे जल्दी, भगवान के बिल से जो संतप हो संतप तो हो रहा है मेरा शरीर वो मेरा ताप मिट जाए, चंद्रहास कुरु हर मम पलटा पाऊ चंद्रास तलवार उसको कहते हैं मेरा ताप दूर करो। हनुमान जी महाराज ने देखा तो जाकर महाराज सीता के लिए विपत्त विशाला बिना ही कहे भर दिए दयाल ऐसी है, भगवान ने कहा रे हनुमान मन कर्म वचन शरण गति होगी, जो मन से कर्म से वचन से जो मेरे शरण हो जाता है सुपने विपत्ति की बूझी देता है क्या उसे दुख हो सकता है, तो हाँ बहुत बहुत ठीक है कह हनुमान विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमरण भजन न होई, विपत्ति होई है आपका जब भजन नहीं होता है आपका चिंतन नहीं होता है वो विपत्ति है, वहां तो नाम पारू दिवस ध्यान तुम्हारे कपाट लोच निरपथ जंत्र प्राण जाए कहीं बाट, ऐसे दुखों प्राण चला जाए पर महाराज बीत तो नाम पाओ आपका नाम तो पहरा दे रहा है हर दम राम 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 भगवान नाम ले रही है, ये तो पहरा लगा रहा है प्राण जा नहीं सकते, प्राण जाओ कैसे पहरा लग रहा है कोई ले जा नहीं सकता प्राणों को जा नहीं सकते, और आपका ध्यान है वो कपाट दे दिया ये तो पहरा लग रहा है बात, एक कुमार देवी अब कैसे जाए वहां से, और लोचन निज पद संसी का अपने चरणों की तरफ ध्यान है, ये ताला लगा हुआ, पहरा हुआ, ताला लग दिया, कुमार देवी आज ताला लग जाए, प्राण जाए कहीं बात, किस रास्ते जाओ, रास्ता सब बंद, प्राण जाएंगे नहीं, ना उपारो क्या हनुमान विभत पुरुष हो, जब तब सुमरण भजन न हो, तो भगवान का भजन नहीं हो ये विपत्ति है, अगर भजन हो रहा है तो बड़ी भारी संपत्ति है, बड़ा भारी आनंद है, मानव जीवन सफल हो रहा है तो सत्संग करना, शास्त्रों को पढ़ना, ऐसी ऐसी पुस्तकें पढ़ना और विचार करना, इसमें आनंद आनंद होता है, मस्ती मस्ती रहती है, दुख रहता ही नहीं, जहां भगवान का स्मरण है वहां दुख कैसा, दुख रहता ही सब दुख मिट जाते हैं, ये मूर्खता का दुख है वो मूर्खता मिट जाती है, मूर्ख में दुख मिट जाता है, प्राग भले ही कैसा ही हो, योग होता है प्राग से, परंतु भगवान का भजन मिलता है ठीक होता है, तो उनकी कोई परवाह नहीं, सुख हो गए दुख हो गए, अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो कुछ भी आओ, हमें क्या मतलब उसे, अनुकूलता प्रतिकूलता हमें क्या मतलब है, हमसे भगवान के भजन से मस्ती कोई मतलब है, तो भजन और स्मरण हो तो दुख है वो भी बड़ा अच्छा होता है, और ये बात ठीक है, सुख में भूलता है आदमी परमात्मा को, दुख में परमात्मा ही भूलते हैं, दुख में मना दान पुण्य होता है, अपराध का ऐसा आ जाए तो उनके दान पुण्य होता है, गरीब के घरों पर साधु जाते हैं तो वो देते हैं कुछ संतों को भी, कोई पाप कट जाए सी बात है हमारा शुभ आ जाए, इस वास्ते वो देते हैं, और बड़े बड़े धनी आदमियों को जाओ भिक्षा तो लट लिए बैठे, बाबा जी आगे नहीं जा सकते, यहाँ से आगे नहीं जा सकते, कौन सी अब क्या करें बताओ, तो उनको दान पुण्य नहीं होता, उनके संतों के दर्शन नहीं होते, तो गरीबी बड़ी अच्छी है जो संतों दर्शन होते हैं, पर उनके मन में भाव रहता है ना, ऐसे धनी आदमियों का हृदय क्रूर होता है, वो दया नहीं होती इनके हृदय में, तो मुझे ऐसे मुझे नहीं, तो दुखदायी परिस्थिति भी साधन सामग्री, सुखदायी परिस्थिति भी साधन सामग्री, साधन धाम मोक्ष द्वारा गीता भागवत में रामायण माया है कि साधन धाम साधनों का घर है, तो क्या अनुकूलता प्रतिकूलता है दोनों ही साधन है, तो साधन धाम मोक्ष द्वारा मुक्ति का तो दरवाजा है और साधनों का धाम है, ये सामग्री है, तो बड़ी भगवान की कृपा है, बढ़िया बात, नारायण 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 नारायण।